भगवते वासुदेवाय। तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं साधुतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामि हरिप्रिये वाञ्छाकृतभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य गुरुनित्यानन्द परम का। और ये हर संडे को हम आध्यात्मिक विषय पे चर्चा करते हैं, तो आज आप सब लोग का यहां भी स्वागत है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि सर्च फॉर हैप्पीनेस, प्लेजर हंट। एवरीबॉडी इज हंटिंग फॉर प्लेजर, इज़न्ट इट? अगेन, संसार में सबको खुशी की तलाश है ना? सब खुशी चाहते हैं और खुशी के लिए हमें शांति चाहिए। अशांत से कुतः सुख, जो कि अशांत है उसको सुख कहा है। और शांत कौन है? शांत कौन है? भगवान भगवद गीता बताते हैं कि शांत वही है, भोक्तारं योगी तपसां सर्वलोक महेश्वर, सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृक्षति। शांति का क्या कोई किसको प्राप्त होती है? बता रहे हैं कि जो व्यक्ति हीरो होंडा का सीईओ बन जाएगा उसको शांति प्राप्त होगी, जो भारत का राष्ट्रपति बनेगा उसको शांति प्राप्त होगी। ये नहीं बता रहे भगवान, बता रहे हैं कृष्ण भगवान कि जो भगवान कृष्ण को समझता है उसी को शांति प्राप्त है। चाहे आप कितनी बड़ी ऊंचाई पे पहुंच जाए शांति नहीं मिल सकती। जब तक आप इस तत्व को नहीं समझेंगे कि भगवान कौन है और मैं कौन हूं, अपने अस्तित्व को जब तक व्यक्ति नहीं समझता है, अपनी स्थिति को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम दुखी रहेंगे, अशांत रहेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि भगवान कृष्ण बता रहे भोक्ता राम यज्ञ तपस्या, मैं भोक्ता हूं। इंजॉय भगवान कृष्ण कौन है? इंजॉय सारे संसार की समस्त इंजॉय करने वाली वस्तुओं के स्वामी इंजॉय कौन है? भगवान है कृष्ण। आप बोल गए ऐसा कैसे? तो वो कैसे इंजॉय है, हम क्यों नहीं? तो भगवान बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कारण क्यों मैं इंजॉय, क्यों मैं ही इंजॉय रहा हूं आप नहीं। कारण बता रहे हैं कि बता रहे हैं क्योंकि सर्वलोक महेश्वरम, मैं सारे लोकों का स्वामी हूं। तो अगर जिसका संपत्ति होगा वही एंजॉय करेगा ना, है कि नहीं? तो बता रहे क्योंकि मैं इस सारी सृष्टि का मैं मालिक हूं, इसलिए इसका एंजॉयर कौन है? मैं। अच्छा इसमें झूठ क्या है बताइए? ये कोई गलत बात है? इस संसार के हर वस्तु का मालिक कौन है? भगवान है। हम तो खाली हाथ ही संसार में आते हैं, आते कि नहीं? खाली हाथ आते हैं, हम कुछ लेके थोड़े ना आते हैं संसार में। तो हमारा नहीं है सर, ये सब भगवान का है। लेकिन हम जबरदस्ती कब्जा कर लेते, करने का प्रयास करते हैं भगवान की संपत्ति, भगवान की संपत्ति पे हम कब्जा कर लेते हैं। बोलते हैं ये मेरा है, तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। जैसे कुत्ता, जानते हैं कुत्ता? कुत्ता जो है, आप जाइए कभी कभी रात में देखिएगा, अगर एक कुत्ता खड़ा है और दूसरे उसको दूसरी तरफ से कोई कुत्ता आते हुए नजर आता है तो क्या करता है? भोंकना शुरू करता है। क्यों भोंकता है? डॉग्स मेंटेलिटी। वो कुत्ता इसलिए भोंकता है, बोलता है मेरे इलाके में कैसे आ गए थे? उस अब बताइए उसको इलाका किसने सौंपा? क्या एमसीडी ने उसको इलाका प्लॉट में दिया है क्या? इस कुत्ते का ये इलाका है बताइए? नहीं। तो किसने बनाया इलाका? उसने खुद डिसाइड कर लिया ये मेरा इलाका है, मैं इस इलाके का स्वामी हूं और इसमें कोई दूसरा नहीं घुस सकता। और उसके बाद कुछ दिन बाद म्यूनिसिपल पागल जब हो जाता है, कुत्ता बहुत ज्यादा तंग करता है, तो म्यूनिसिपैलिटी वाले आते हैं उसको पकड़ के ले जाके बंद कर देते हैं पागल खाने, पागल कुत्ते को। बोलते हैं बहुत हो गया तुम्हारा इलाका, चलो तुम्हारा इलाका दिखाते हैं कहाँ। तो उसी तरह से सरकार जिस तरह से एमसीडी है उसी तरह से भगवान है। वास्तव में ये संसार की हर वस्तु, हर जमीन जगह पे भगवान का अधिकार है। ईशा अवश्यम इदम सर्वम, जो कुछ भी है ये सब भगवान का है। यत किंच जगत्याम जगत, इस संसार में जो कुछ भी आप देखते हो सब किसका है? भगवान का। ईशा ईशा ईशावास्यम भगवान का है। और
अगर हम इस बात को भूल के हम अपने आप बना लेते हैं ये बाउंड्री मेरा है, तो उसका परिणाम होगा कि मालिक कौन हो सकता है जिसमें शक्ति है कि नहीं। अगर आप किसी चीज का मालिक बनने का प्रयास करते हैं जिसको कंट्रोल करने की आप में क्षमता नहीं है तो क्या होगा बताइए, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। उसी तरह से जिस तरह से कि मान लीजिए कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान ने 16,000 शादियां की, 16,108 शादियां, तो हम नहीं क्यों नहीं कर सकते। एक व्यक्ति ने पूछा था ये प्रश्न प्रभुपाद से, तो प्रभुपाद ने बोला करो क्यों क्या दे पुनः प्रॉब्लम करो फिर पता चलेगा। एक पत्नी तो संभलती नहीं, उसी में डाइवोर्स हो जाता है, उसी को मेंटेन करने में, उसको संतुष्ट करने में सफल नहीं, सफलता नहीं मिलती। 16,000 क्या संतुष्ट करेंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, सुसाइड करेंगे। बस भगवान क्योंकि स्वामी हैं और समस्त शक्तियों के स्वामी हैं, इसलिए उनके लिए संभव है, वो मालिक है, उनको मालिक बनना शोभा देता है। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियली मालिक बनने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे। आप समझ रहे बात को, अशांत हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अनपढ़ व्यक्ति है, ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए कोई अनपढ़ व्यक्ति है और उसको उसको जो है वो हाई कोर्ट का जज बना दिया जाए, तो क्या हो, परेशान हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। उसको दे दिया जाए इंग्लिश में पढ़ने के लिए, वो ABCD भी नहीं जानता, उसको ये पूरी किताब आपको दो रात में याद करनी है, क्या होगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। सर बात को, क्यों, क्योंकि उसमें क्षमता नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को बड़ा पोस्ट दे भी दिया जाए पर अगर वो उसके योग्य नहीं है, उसकी क्षमता नहीं है उसको कंट्रोल करने की, तो वो क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। उसी तरह से चूंकि हमारे अंदर क्षमता नहीं है इसलिए हम मालिक नहीं है, और इसलिए चूंकि मालिक नहीं है इसलिए हम इंजॉय सुन रहे बात को। लेकिन अगर आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से अगर हम भोक्ता बनने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है, अंत में फ्रस्ट्रेशन मिलता है। तो भगवान बता रहे कि इसलिए इस तत्व को जो समझता है वास्तव में शांति उसी को प्राप्त होगी, तो वो कंपटीशन नहीं करता है भगवान से, भगवान ने भी रासलीला की हम भी रासलीला करें, लेकिन भगवान को एड्स नहीं हुआ था, समझ रहे, हम भगवान से कंपटीशन नहीं कर सकते, भगवान की शक्तियां अनंत है लेकिन हम तो छोटे हैं, तो हमारा रोल अगर हम अपने आप को नहीं समझे, अगर हम अपना गोल अपनी क्षमता से ज्यादा सेट करेंगे तो क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, समझ रहे बात को, अशांति होगा, और अचीव नहीं कर पाए तो क्या होगा, सुसाइड करेंगे। तो इसलिए अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेता है जो व्यक्ति, इस बात को समझ लेता है और वो भगवान बनने का प्रयास छोड़कर भगवान का सेवक बनने का प्रयास करता है, तो फिर वो सुखी हो जाता है। वो जानता है हर वस्तु हमें भगवान की सेवा में लगानी है, तो फिर हर जगह शांति का माहौल, सबके जीवन में शांति और सुख का माहौल आ जाए। लेकिन जैसे ही व्यक्ति भगवान बनने का प्रयास करता है तो वो फिर पकड़ा जाता है माया के द्वारा। प्रकृति केवल भगवान के अधीन है। जब जीव प्रकृति को अपने अधीन में करना चाहता है तो ही प्रकृति उसके लिए काल बन जाती है। जैसे कि आजकल के वैज्ञानिक नेचर को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, नेचर ने ऐसे घेर लिया है कि बाहर निकलने का कोई चांस नहीं है। आज चारों तरफ से ऐसे घेर लिया है कि अब छटपटा के भी बाहर नहीं निकल सकते, बर्बादी के कगार पे, बहुत अहंकार, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हम पूरे हैं पूरे धरती को उलट पलट देंगे। तो इसका परिणाम है कि आज पूरी पृथ्वी को बर्बादी के कगार पे खड़ा कर दिया है। प्रकृति विद्रोह करेगी और प्रकृति के आगे हमारी शक्ति कुछ भी नहीं है। क्या है, कुछ है, कुछ नहीं है। बड़े बड़े वैज्ञानिक कुछ नहीं कर सकते जब प्रकृति विद्रोह करती है। इसलिए प्रकृति को भगवान के नियंत्रण में आ सकती है। जब जीव प्रकृति को कंट्रोल करने का प्रयास करता है तो उसमें और फंस जाता है, और फंस जाता है। इसलिए हमें, इसलिए कृष्ण बता रहे हैं कि अगर आपको शांति चाहिए तो सबसे पहले अपने पोजीशन को समझना पड़ेगा, और अपने जगह पे अगर आप स्थापित रहेंगे तो आप खुश रहेंगे। लेकिन अगर आर्टिफिशियल रूप से अगर भगवान को, भगवान की नकल करने का प्रयास करेंगे तो दुखी दुख मिलेगा। तो इससे शांति जब आ जाएगी, जब हम इस बात को समझ जाएंगे कि हर चीज भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए उपयोग की जानी चाहिए, तो फिर उससे क्या होगा कि हम फिर भोक्ता और कर्ता के भाव से मुक्त हो जाएंगे, और फिर आप देखेंगे कि जीवन जो है वो कितना सरल हो जाता है, कितना आसान हो जाता है। आज लोग इस बात से कितने परेशान हैं, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब चाहिए, पूरा संसार की जितनी अच्छी वस्तुएं मेरे घर में होनी चाहिए। ठीक है, आ जाएगी, और इसलिए माया भी बड़ी एक्टिव है, बोलती हाँ हाँ जरूर आएंगे, मैं तुम्हारे घर आऊंगी, मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगी ना। और माया भी एकदम टीवी पे एडवर्टाइजमेंट पर एडवर्टाइजमेंट दिया है, मुझे खरीदो, मुझे खरीदो, हाँ जरूर खरीदूंगा, मुझे चाहिए, माया भी आई एम रेडी टू कम है। लेकिन आपके पास 25 लाख रुपया होना चाहिए, मर्सिडीज बेंज चाहिए, मुझे चाहिए, मेरे घर में होनी चाहिए, ठीक है आ जाऊंगी, लेकिन 25 लाख रुपया पहले कमाओगे गधे की तरह काम करके, तो गधे की तरह काम करता है, दिन रात हाँफता है, हाँफ के काम करता है, पैसा जमा करता है, और फिर मर्सिडीज बेंज आती है उसके घर, और उसमें बैठता कितना देर तक है, 1-2 घंटे, फिर तभी देखता है किसी दूसरे ने तो उससे भी अच्छी गाड़ी खरीदी है, अब माया दूसरे गाड़ी के रूप में पूछती, देखो मुझे लो, मुझे खरीदो, वो गाड़ी ठीक नहीं है, तो इस तरह से कितना भी बड़ा पोजीशन मिल जाता है फिर भी वो क्या रहता है, अशांत रहता है। असल बात अशांत रहता है क्योंकि वो अपने आप को भोक्ता समझ रहा है। इसलिए शांति उसी को है जो संतुष्ट है, जो जीवन की मिनिमम नीड्स हैं, बेसिक नीड्स, उसको मिल जाता है, वो संतुष्ट रहता है। और बाकी जितनी अच्छी अच्छी संसार की चीजें हैं उसको क्या कहते हैं, ये भगवान की सेवा में जाएगी, मेरी सेवा में नहीं। ऐसा व्यक्ति संतुष्ट रहेगा, फिर वो जो भी इस बात को समझ लेता है। तो आज के समय में अगर आप देखेंगे तो सभी लोग अपने आप को भगवान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, सब लोग ईश्वर बनना चाहते हैं, कंट्रोलर है कि नहीं, बनना चाहते हैं कि नहीं कंट्रोलर। कोई जो भी अगर क्लर्क है तो, चपरासी है तो क्लर्क बनना चाहता है, और क्लर्क है तो वो ऑफिसर बनना चाहता है, ऑफिसर है तो वो मैनेजर बनना चाहता है, और मैनेजर है तो वो जनरल मैनेजर बनना चाहता है। क्यों? ज्यादा लोगों को कंट्रोल कर पाऊंगा। तो जो जनरल मैनेजर है वो जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता है, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट बनना चाहता है, और जो प्रेसिडेंट है वो सीईओ बनना चाहता है। समझ रहे बात को? क्यों? ताकि मैं इस कंट्रोल कर सकूं, सब ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं कंट्रोल कर सकूं। और जब सीईओ बन जाता है वास्तव में कंट्रोल नहीं कर सकता, तो कहीं पे भी जैसे मान लीजिए कि कोई आईएएस ऑफिसर, बहुत लोग आईएएस ऑफिसर बनने का तैयारी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जब सिविल आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं बड़े खुश हो जाते हैं, जब जॉब लग जाती है इलाके में कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो सबसे पहले आईएएस ऑफिसर को टेंशन पकड़ा जाता है, पड़ जाता है कि नहीं, चारों तरफ से गालियां पड़ती हैं, ऊपर से मिनिस्टर गाली दे रहा है क्या किया। हर व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई बैठा है डांटने के लिए, और हर व्यक्ति के नीचे कोई ना कोई बैठा है उसको परेशान करने के, जैसे बोलेगा वैसे वो नहीं करेगा। अब क्या कर रहा हूं, नीचे वाला बोलेगा वो सोचेगा मैं कंट्रोलर हूं, मैं सबको कंट्रोल करूंगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि आप जैसा चाहोगे चीजें वैसी ही, कभी ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा, फिर हार्ट अटैक हो जाएगा। आजकल बहुत हार्ट अटैक हो रहे हैं ना, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, इसीलिए कि यू आर नॉट द कंट्रोलर बट यू आर थिंकिंग दैट आई एम द कंट्रोलर, आई विल कंट्रोल। और जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, अरे मैं तो कंट्रोलर था, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कंट्रोलर हूं, आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गया। अब बाकी लोग बगल में बैठे, अरे हाँ आप तो कंट्रोलर हो, कंट्रोल कैसे, आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गया, कुछ करो कुछ करो है? तो बाकी लोग होते हुए आपको चढ़ा देंगे, आप बोलोगे देखो मैं कंट्रोलर हूं, हाँ आप कंट्रोलर हो, और वही कुछ अरेंजमेंट करके किसी को बोल देंगे तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा तो अरे तो आगे बोलेंगे अरे आप तो कंट्रोलर हो, ये कैसे हो गया, आपको जलाएंगे, आपको और फ्रस्ट्रेट करेंगे, प्रूव करेंगे कि आप कंट्रोलर नहीं। तो ये माया का नेट है और इसी में हम फंसे हुए हैं। जैसे कि उदाहरण बता दूं आप लोग, एक व्यक्ति उतना बड़ा नहीं होता है लेकिन बगल वाले उसको बोल के बड़ा कर देते हैं, आप तो बहुत बड़े हो बहुत बड़े हो, बहुत अच्छा मैं बड़ा हूं, अच्छा सब बोल रहे हैं तो हो सकता है बड़ा होना, फिर वो अपने आप को बड़ा मानने लगता है। 40-50 लोग उसको बोलते हैं तुम बहुत बड़े हो, आप तो बहुत बड़े हैं, आप तो महान हैं, आप तो सम्राट अशोक हैं, आप तो अकबर हैं, आप तो सिकंदर हैं, तो भी अपने आप को ही इमेजिन हिमसेल्फ ग्रेट, तो बोलते हैं हाँ ठीक है अच्छा अब समझ में आ गया आप कैसे बड़े, हाँ ठीक है, अब आप बहुत बड़े हैं, अब हमें, हम छोटे हैं तो अब हमें मेरा खर्चा चलाइए। अब खर्चा चलाने के लिए बड़े बाबू परेशान गधे की तरह काम कर रहे हैं, हैं? हार्ड वर्क, मुंह से फेन निकल रहा है, पसीना आ रहा है, हैं? हर तरह के गलत कार्य कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि मैं बड़ा हूँ। अगर अगर मैं इनको संतुष्ट नहीं करूंगा तो फिर बड़ा कैसे रहूंगा? इज्जत का सवाल, असल बात को। इसके इस चक्र में वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अब छोट बोल भी नहीं सकते, नहीं मैं बड़ा नहीं, अब नहीं बोल सकते आप, क्योंकि क्योंकि एक बार आपने स्वीकार कर लिया, तब शर्म आएगी अपने आप को छोटा बोलने में, है कि नहीं? अब फंस गए, गले की हड्डी बन गई, वही ग्रेटनेस जो है क्या हो गई, गले की हड्डी बन गई है ना, तो आप उसको बाहर कर सकते हैं ना अंदर कर सकते हैं। और अशांत रहते हैं, इस तरह से मृत्यु आ जाती है, सब समाप्त हो जाता है। इसलिए इस संसार में माया कैसे हमें परेशान करने के लिए चक्र चलाती है, उसको जो व्यक्ति नहीं समझता है, उसी तरह से फॉल्स डेजिग्नेशन के चक्र में आके फंस जाता है। वो सोचता है मैं कंट्रोलर हूं, और वास्तव में वो जब अपने आप को देखता है तो उसको लगता है अरे नहीं नहीं मैं तो नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूं, मैं कैसे कंट्रोलर हूं? तो बगल वाले बोलते नहीं 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 आप चिंता मत करो, आप ही कंट्रोलर। जैसे कि कंस, कंस को जानते हैं, कंस का नाम सुना होगा आप लोगों, तो कंस जो है वो कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षस भेजा, पहले पुतना को भेजा, कृष्ण जो इतने छोटे थे, पुतना इतनी बड़ी राक्षसी 12 मील लंबी, उसका शरीर पुतना का जब गिरी थी मरी तो 12 मील लंबी लंबा शरीर, इतनी शक्तिशाली थी। अब पुतना को मार दिया भगवान, जब पुतना को मारा तृणावत को भेजा, तृणावत को भी मार दिया 1 साल के उम्र में, तो उसको पूरा पक्का विश्वास हो गया कि ये तो वही भगवान है, भाई ऑर्डिनरी बच्चा तो नहीं मार सकता इतनी बड़ी राक्षसी को। तो सोचने लगा, लगता है मुझे सरेंडर कर देना चाहिए, कृष्ण को समर्पण कर देना चाहिए, वास्तव में नहीं तो मार ही डालेंगे मुझे। तो सोचने सोच ही रहा था सरेंडर करने के लिए, तभी चाणूर मुष्टिक और बाकी जितने बाणासुर और अघासुर बाकी जो राक्षस थे सब आ गए। अरे क्या सोच रहे हैं आप? नहीं नहीं मैं सोच रहा हूँ ये वही है, भगवान ही है, नारद जी की भविष्यवाणी हुई थी वो सत्य हो गई लगता है। अरे नहीं आप क्यों महाराज चिंता करते हैं, हम है ना, आप इतने महान राजा हैं, आप ऐसे कैसे हार मान लीजिएगा, ऐसे मत हार मानिए। अरे अभी अघासुर है, अघासुर को भेजते, बकासुर भेजते हैं, प्रलंबासुर हैं, वत्सासुर, सारे मारे गए एक एक करके, सारे असुर हैं, सारे असुर मारे गए, अंत में केसी राक्षस मारा गया, भ्योमासुर मारा गया, अंत में भगवान जब मथुरा पहुंचे तो वहां पे उन्होंने एक बड़े हाथी को मारा, इतने बड़े धनुष को, शिव धनुष को झटके में तोड़ दिया, जिसको बड़े 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 शक्तिशाली राजागण भी नहीं तोड़ पाए। फिर भी ये मूर्ख कंस, और ये सोचता था लगता है यही भगवान है, अब सरेंडर कर देता हूँ। अच्छा तभी बगल से उसके दोस्त आते, नहीं नहीं सरेंडर मत करो महाराज, हैं आप सरेंडर कर देंगे तो हमारा क्या होगा, आप तो इतने महान हैं। और पहले वो अपने आप को महान मान बोलता भी था, मुझे कोई नहीं मार हरा सकता, तब इनके सामने अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहता था, तो इसलिए वही जो झूठा अहंकार उसकी मृत्यु का कारण बन गया। तो ये अहंकार हमारी सारी समस्या की जड़ है, हमें भगवान की शरणागत में नहीं आने देता है, हमें कंस की तरह है ना, और कई सारे कंस के, हम कंस हैं और कई सारे जो है कंस के चेले चमचे, और उसी तरह से हमारे भी कई चमचे हैं, बोलते नहीं नहीं हरे कृष्ण की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही खुश हो जाएंगे, हरे कृष्ण महामंत्र क्यों कर रहे हो, भगवान भगवान नहीं है, आप ही भगवान है। अरे अच्छा मैं भगवान हूँ, अरे और क्या, हाँ लगता है ठीक बोल रहा है। वैसे तो मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन जब लोग बोल रहे हैं तो मानने में क्या हर्ज है, उसमें पड़ सकते हैं। अब समझ बात है। तो इस तरह से अब भगवान का रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन भगवान तो वास्तव में है नहीं। तो एक कहानी है, आप जानते हैं, एक सियार था। तो सियार जो था, एक बार क्या हुआ कि दौड़ते 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 गया था, एक धोबी कपड़ा धोता था तो उसमें नीला रंग का लगा रखा था, वो गलती से गिर गया। जब कुत्ते उसके पीछे पीछे कर रहे थे, दौड़ रहे थे जो खाने के लिए सियार को, तो भाग रहा था तो उसी में गिर गया, टब में गिर गया। जब टब में गिरा तो उसका शरीर हो गया नीला। जब वो बाहर आया तो उसको देख के सारे जंगल के जानवर को, अरे ऐसा तो कोई जानवर ही नहीं, लगता है दिव्य लोक का जानवर है, इसके पास अजीब शक्तियां होंगी, सब इसको नमस्कार करो। तो 8-10 जानवर मिलके उसको बोले, हमारे नए राजा आ गए, ये दिव्य प्राणी हैं, इनको सब नमस्कार करो, देखो इनका रंग कैसा है, कितना अजीब रंग है, ऐसा कोई प्राणी हमने नहीं देखा, ये बहुत शक्तिशाली है। सबने उसको राजा बना दिया। वो उसको बोलना चाहिए था ना कि मैं सियार हूँ बाबा, मैं राजा नहीं हूँ। अब वो भी सोच रहा है, अरे क्या दिक्कत है, जब सब राजा मान ही रहे हैं, राजा बन जाते हैं, तो राजा बन जाते हैं चलो। तो फिर वो अपना तो बड़े बड़े और छोटे छोटे जानवर पहले राजा माने, धीरे धीरे बड़े बड़े मानने लगे, और फिर हाथी भी इतने लोगों देखे, अरे हाथी भी सुना अच्छा, तो डर गया, लगता है वास्तव में हो सकता है, क्यों रिस्क लेने का, मार दो राजा उसी को, है ना। फिर उसके बाद शेर भी, उसको भी डर दहशत हो गया, जब इतने लोग बोलेंगे कि राजा है तो शेर भी सोचेगा थोड़ा, है ना, तो वो भी सम्मानने लगे, सब उसकी सेवा में लग गया, वो भी बड़ा एकदम आराम से। फिर क्या हुआ कि एक बार सब लोग सो रहे थे रात के समय, तो रात में जनरली सियार जो है ना हाँ हाँ करते हैं, है ना। और सियार का एक बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर कोई दूसरे से सियार हाँ हाँ करेगा ना, तो उसको भी बड़ा एक्साइटमेंट हो जाता है हाँ हाँ करने का, हाँ हाँ किए बिना रह नहीं सकता, वो कंट्रोल नहीं कर सकता अपने आप को। तो बड़ा प्रयास किया कंट्रोल करने का, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाया। और जैसे ही हाँ हाँ करने लगा तो बाकी सारे लोगों को पता चल रही है, तो सियार नहीं, सियार है, हम लोग तो इसको दिव्य प्राणी समझते थे, और सबने उसको मार के खा गए। तो वही हालत है हमारी, हमें हम हैं भगवान के सेवक, लेकिन माया के जो एजेंट हैं वो हमें बड़ा करते हैं, आप तो ये हो, आप तो वो हो, आप तो ये इंजीनियर है, आप तो वो इंजीनियर है, आप तो ये डॉक्टर है, आप तो वो डॉक्टर है, हाँ तो ये ऑफिसर है, वो ऑफिसर है, और हम भी फूल जाते हैं, हाँ ऑफिसर है। और उसके बाद हमारा, उसके बाद अंदर से वो एक कांटा डालते हैं और सारी हवा निकाल देते हैं, फिर बताते हैं आप क्या हो। इसलिए अच्छा है कि ये लोग आएंगे, सब लोग जब आपको बड़े बोलेंगे तो हमें समझना चाहिए कि नहीं नहीं देखो ये लोग कुछ लेंगे बाद में, है ना। तो ये नेचर है इस संसार का, अगर आपसे कुछ लेना है, आपको बाद में कष्ट देना है, तो क्या करना है, पहले आपको आपको बड़ाई करना है, आपको फुला देंगे, फिर आपको छीनेंगे, निकालेंगे, एक और चीटिंग, ये चल रहा है, ये संसार है, और हम उसके बस में रहते हैं, और हम अपने आप को महान समझते हैं, इतना महान कि हम सोचते हैं कि भगवान की भी आवश्यकता नहीं, मैं ही भगवान हूं। आप इसको अगर गहराई से इस बात को आप सोचेंगे तो आप पाएंगे अपने जीवन में कि हम सब यही हालत है। आप सोचिए जाके, इस पर विचार कीजिए, आप सब फूड फॉर थॉट, ये है कि नहीं, और ये हमारी सारी समस्या की जड़ है, सारे दुख का, सारी अशांति का कारण यही है। तो अगर हम अपने आप को भगवान का दास माने, कोई आके बोलता है अरे आप तो बहुत महान, नहीं 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 महान नहीं, समझ जाना है कि अभी महान बना रहा है लेकिन बाद में कुछ काम निकल रहेगा, सुनो तो नहीं नहीं मैं महान नहीं हूँ, भगवान महान है, ऐसे बोल सकते हैं, भगवान महान है ना। तो वी शुड पॉइंट आउट टुवर्ड्स द लॉर्ड। तो इस तरह से क्या होगा कि वो आपसे कुछ मांगे, नहीं नहीं भगवान से मांगी, मेरे पास नहीं है, तो खुद ही कंगाल है ना, तो फिर आप बच जाएंगे, है ना, आप बच जाएंगे। आपको जितनी क्षमता है बोलिए इतना कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं कर सकता, ठीक है। बोले अरे आप तो भगवान, आप भी नहीं कर सकते। नहीं नहीं बाबा, मैं भगवान नहीं हूँ, क्यों अननेसेसरी टेंशन लेने का। जितनी क्षमता है उतना आप दूसरों का सहायता करो, उससे ज्यादा बोल दो नहीं होगा मुझसे, बस दैट्स ऑल। भगवान की शरण लो, भगवान करेंगे, वो सबके कर्ता धर्ता पालक है, मैं पालक नहीं हूँ, मैं तो अपने लिए ही, मैं तो खुद ही भिखारी हूँ, उन्हीं की कृपा पे निर्भर है। अगर वो बुद्धि नहीं देंगे तो फिर मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जब व्यक्ति इस बात को समझता है वो माया के प्रभाव से बच जाता है, नहीं तो जब व्यक्ति नहीं समझता असुर स्वभाव का, वो भगवान बनने का प्रयास करता है, और सब भगवान बनने का प्रयास करते हैं और आपस में लड़ के मर जाते हैं। जैसे मान लीजिए इस रूम में कितने लोग हैं, ऑलमोस्ट 60-70 लोग हैं, सब भगवान हैं, सब अपने आप को भगवान माने, लेकिन भगवान तो एक ही हो सकता है ना, तो वो सब प्रूव करने का प्रयास करिए मैं भगवान हूँ, बोल नहीं मैं भगवान हूँ, तो इन दोनों में क्या होता है, लड़ाई होती है प्रूव करने के लिए कौन भगवान है, और इस तरह से एक दूसरे को मारते हैं, झगड़ा हो रहा है, फाइट होती है, युद्ध हो रहे हैं, है? ये साबित करने के लिए कौन ग्रेट है, हु इज ग्रेट, एक्चुअली नोबडी इज ग्रेट बट स्टिल वी आर फाइटिंग। जैसे कि एक बार एक व्यक्ति जेल में गए, तो उन्होंने पागल खाने तो बहुत सारे पागल थे, तो उन्होंने क्या देखा कि एक पागल जो था वो एक पलंग के ऊपर एक खाट रख दिया था, और खाट के ऊपर एक चेयर रख दिया था, और उसके ऊपर जाके बैठ गया, और बाकी पागलों को बोला इधर इधर सब इधर, बाकी पागल भी आके वो बैठो नीचे, सब बैठ गए। देखो सुनो मेरी बात, मैं कहाँ बैठा हूँ, ऊपर बैठा हूँ ना, तो हाँ हाँ ऊपर बैठे, मैं तुम सबका राजा हूँ, बोलो तो सब बोले आप हमारे राजा हैं, हाँ बोलो हैं? तो वो अपने आप को राजा मान रहा है पागल, अब बाकी पागल भी क्या बोल रहे हैं, हाँ आप राजा हैं। तो इसने बोला कि डॉक्टर से बोला ये क्या, पहले ये पागल बनने से पहले राजा था क्या, तो बोले कि नहीं नहीं ये तो इनका खेल है, पागलों का यही काम है, एक पागल राजा बनता है बाकी पागल उसको राजा बोल मान भी लेते हैं राजा। तो उसी तरह से इस संसार का ही नियम है, एक व्यक्ति बोलता है मैं ग्रेट हूँ, बाकी सब बोलते हैं हाँ जिंदाबाद, सो एंड सो जिंदाबाद, और फिर जो है वो यही चल रहा है। तो उसमें क्या होता है कि बाद में एंड में कष्ट होता है, दुख होता है। तो हम सबको इस बात से सावधान रहना चाहिए, वास्तव में इस संसार के राजा स्वामी जो कुछ भी वो भगवान है, और उनकी आज्ञा के अनुसार अगर हम अपना जीवन यापन करते हैं तो हम शांति और सुख का अनुभव करेंगे, उनके नाम का जप करेंगे अगर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उनके उपदेश का अध्ययन करेंगे, उसको अपने जीवन में उतारेंगे, भगवद गीता अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो इससे भी जो है हम संतुष्ट और सुखी रहेंगे। और अपने अस्तित्व में अगर मैं एक सेवक हूँ तो सेवक रहूं, और उसी में भगवान की अगर मैं सेवा करूं हो सकता है कि मैं खुश हो जाऊं, लेकिन अगर आर्टिफिशियली अगर मैं राजा बनने का प्रयास करूंगा तो फिर दुख हमें ही होगा। तो इसलिए हम अपने पोजीशन को याद रखें, हम कौन है, हम भगवान के सेवक, और हमारे संसार में इसीलिए जन्म हुआ है, इस बात को हम स्वीकार करें और उस स्थिति में अपने आप को ढालें, और फिर हम शांति और सुख से रहें। तो इसी के लिए हमने आपको ये प्रोग्राम्स करते हैं ताकि ट्रेनिंग दी जाए, एजुकेशन, तो रियल एजुकेशन यही है, वास्तव में जो एजुकेशन है वो यही है, एजुकेशन टू एजुकेट पीपल दैट दे आर नॉट गॉड बट दे आर सर्वेंट ऑफ गॉड, है ना। तो इसलिए सब खुद सुखी रहेंगे। अब मैं भगवान बनने का प्रयास कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि ये किताब मेरी होनी चाहिए, हैं? और आप हैं, आप भी चाहते हो कि नहीं ये किताब मेरी होनी चाहिए। अब किताब तो किसी एक ही पास जा ही सकती है ना, तो क्या होगा फिर आपके और मेरे बीच? फाइटिंग होगा, दोनों को डिस्टर्बेंस होगा, है कि नहीं? तो इस तरह से मी और एनीथिंग विच बिलोंग्स टू मी, हैं? और आपका मी और मेरा मी क्या हो रहा है? टकरा रहा है, तो वहां से क्या हो रहा है? फाइट, टेंशन, क्राइम, एंजाइटी, डिप्रेशन। जब मेरा मी आपके मी से क्या होता है? टकराता है, क्या होता है? क्लैश, सफरिंग। तो यही चल रहा है संसार में, चल रहा है कि नहीं? एक स्त्री है, उसको दो लोग चाहते हैं, ट्रायंगुलर लव। फिर क्या होगा? लाइफ विल बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो इसलिए उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक है, सब उसको कब्जा करने का प्रयास करते हैं, दे फाइट विद ईच अदर, नोबडी इज हैप्पी एंड नोबडी गेट्स इट, एंड इवन इफ समबडी गेट्स ही इज नॉट हैप्पी, ही इज ऑल्सो फ्रस्ट्रेटेड। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि संघर्ष ही संघर्ष। जस्ट लाइक एक तालाब में अगर आप पत्थर फेंको तो क्या बनता है? रिपल्स बनता है ना, रिपल्स ऐसे ऐसे। और एक उधर पत्थर फेंके तो वहां भी, और दोनों रिपल्स आगे क्या होता है? टकराता है ना, इंटरसेक्ट करता है, टकराता है। तो सब अलग अलग पत्थर फेंक रहे हैं और सारे टकरा रहे हैं एक दूसरे से, और एक तो आप जो हैं वो बाकी सारे के पत्थर रिपल से, एक हर व्यक्ति जैसे इसमें अगर 100 लोग हैं और 100 लोग में एक हर पहला एक व्यक्ति जो है बाकी 99 लोगों से टकरा रहा है किसी न किसी रूप से, हैं? और वो 99 लोगों को टक्कर भी दे रहा है, इस तरह से सब परेशान एक दूसरे से। लेकिन मान लीजिए कि पत्थर सारे पत्थरों को एक ही जगह फेंके, मैं भी इसी पॉइंट पे फेंकूं, आप भी उसी पॉइंट पे, सब उसी पॉइंट पे फेंके, तो क्या होगा? सारे रिपल्स जो है वो टकराएंगे नहीं, टकराएंगे नहीं, टकराएंगे। तो वो सेंट्रल पॉइंट कौन है? कृष्ण है। भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास, रादर देन सेटिस्फाइंग आवर ओन सेल्फ लेट अस ट्राई टू सेटिस्फाई ऑल ऑफ अस, सेटिस्फाई गॉड। तो फिर क्या होगा? कोई क्लेश नहीं होगा, कोई युद्ध नहीं होगा, तो इस तरह से शांति स्थापित होगी बीच में, और जब शांति होगी तो अपने आप सुख स्थापित होंगे, सुख हो जाएंगे। तो ये हमारा पीस फॉर्मूला है, है? पीस फॉर्मूला क्या है? पीस फॉर्मूला क्या है? यस, हाँ, और
सब कुछ भगवान श्री कृष्ण
का, हाँ भगवान का है, तो क्या करना चाहिए? खा लेना चाहिए सब भगवान जैसे सरकार की सब संपत्ति सरकार की है, लेकिन सब करप्शन में गायब कर देना है। क्या करना है? अगर भगवान की है तो भगवान की सेवा में लगाना है, हैं? उनकी सेवा में, उनकी आज्ञा के अनुसार उसका उपयोग होना चाहिए, है ना? तो ये करना है, इससे हमारे हमें शांति प्राप्त होगी। तो इसको अगर हम समझेंगे तो शांति। किसी को कोई प्रश्न है शांति को लेके, सुख को लेके? हाँ
भगवत गीता में भगवान जी कहते हैं कि हमें अपने इंद्रियों को मतलब बलपूर्वक नहीं रोकना चाहिए, उन्होंने भगवान जी की मतलब काम करना चाहिए।
हाँ।
तो जैसे अगर हम बाहर का खाना खाते हैं या कुछ भी खाते हैं तो उसे भगवान जी के भोग में लगाते हैं, तो वो क्या ठीक होगा
तो भगवान की सेवा में लगाना है, लेकिन भगवान की सेवा में आप जहर नहीं लगा सकते ना, तो जहर को भगवान की सेवा में लगाना ठीक नहीं है। भगवान की सेवा में जहर को दूसरे तरीके से लगा सकते हैं, जो भगवान के जो राक्षस है उनको जहर खिला के, लेकिन भगवान को नहीं खिलाना है जहर, तो उसको लगाना है भगवान की सेवा लेकिन दूसरे तरीके से लगाना। तो हमें भगवान को चढ़ाना चाहिए हर चीज, लेकिन वही चीज जो कि भगवान को अच्छा लगता है। जब इंडिया में कुछ दिन पहले कई तरीके की गड़बड़ चलते हैं, एक क्या हुआ था, एक ने क्या किया कि गणेश जी को क्रिकेटर का ड्रेस पहना दिया, उसके उनके हाथ लगा गणेश चतुर्दशी को बॉम्बे में, तो मतलब उनको लगता है कि अगर ये क्रिकेटर बना देंगे तो गणेश जी बड़े खुश हो जाएंगे। कुछ दिन के बाद क्या करेंगे, गणेश जी के बगल में गर्लफ्रेंड खड़ा, क्योंकि मुझे लगता है क्रिकेट अच्छा है इसलिए गणेश जी को भी
अच्छा होगा,
मुझे गर्लफ्रेंड और इनको मुझे चूंकि ये गाना अच्छा लगता है तो गणेश जी को भी
अच्छा
लगता होगा, तो इसलिए रात को क्या करते हैं मूवी सॉन्ग लगा के गणेश जी की पूजा करते हैं, इतने वल्गर वल्गर सॉन्ग चलाते हैं और दुर्गा देवी को आरती उतारते हैं। तो ये हम उस तरह से भगवान की पूजा करते हैं जैसे हम चाहते हैं, तो वो उससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तो भगवान जिस तरह से भगवान चाहते हैं उस तरह से हमें अपने को बदलना है, ना कि भगवान को ही बदलते। तो भगवान बताते हैं कि कुछ चीजें जैसे मांस आप भगवान को नहीं चढ़ा सकते, बाहर तो मांस मिलता है, आप मांस भगवान को चढ़ा के खा सकते हैं, नहीं खा सकते, भगवान तो अच्छा नहीं लगे, इसके हमें सीखना है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अन्न सब्जियां और दूध के पदार्थ भगवान को अर्पित करने चाहिए है? और जिन चीजों में लहसुन प्याज मीट मांस मिला हुआ है वो चीज हम भगवान को अर्पित नहीं कर सकते, अंडा ये सब अर्पित कर
सकते,
वेज का कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ है प्रश्न, प्रश्न पूछना चाहिए आप लोगों, प्रश्न पूछने तो अच्छा रहेगा ना। हाँ भगवान का ही सब है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपके लिए ठीक नहीं है, उनके लिए जो कि जो है दंडित के, जैसे जेल भी सरकार का ही है कि नहीं, लेकिन आप जाके जेल में रह सकते हैं, सरकार नहीं बनाया है, सरकार की मर्जी से बनाया जेल, सेंक्शन हुआ है, पैसा पास हुआ है, लेकिन आपके लिए दुख होगा उसमें, है ना। तो आपको मना किया गया क्योंकि आप अगर जाएंगे वहां पर तो आपको दुख होगा। उसी तरह से कुछ ऐसी चीजें भगवान ने बनाई है जो उन लोगों को दुख देने के लिए, अगर वो कोई उसका सेवन करेगा तो उसको दुख होगा। तो जहर ने भगवान जहर भी भगवान ही बनाए हैं, है कि नहीं, लेकिन जहर आपके आप पियोगे नहीं पी सकते, भगवान ने बनाया है, साथ ही साथ ये भी लिखा है कि ये आपके लिए नहीं बनाया है, आप इसको मत लेना, हमने बनाया है लेकिन आप इसको मत लीजिएगा, किसी और पर्पज के लिए बनाया है ना? तो हर चीज बनाया जा सकता है, जैसे परमाणु बम है बनाया गया है, लेकिन समझो ये नहीं कि उसको फेंक दिया जाए, हो सकता है बनाया गया है लेकिन खराब है वो, उसको इस्तेमाल करना हानिकारक हो सकता है। तो इसलिए हमें सबके हाथ में नहीं दिया जाता है उसको, समझ रहे ना। उसी तरह से कुछ चीज ऐसी है जो कि भगवान ने बना रखी है, लेकिन उसको प्रॉपर इस्तेमाल। और कोई प्रश्न? हाँ
जी, आपने बोला लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए,
लहसुन प्याज इसलिए नहीं खा सकते क्योंकि उससे जो है वो आध्यात्मिक जीवन प्रगति में बाधा होती है ना। फिजिकली तो कोई हो सकता है उतना नुकसान ना हो, है ना, लेकिन हमारे क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में हमें मन को बस में करना होता है ना, और मन को बस करने के लिए कुछ चीजें जो है वो ठीक नहीं है। अगर आप मन को बस में करने का प्रयास कर रहे हैं तो कुछ चीजें अच्छी नहीं है
आपको। यही क्यों करते
हैं? क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है, आचार्यों का जो है एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस है कि अगर आप उसको सेवन करेंगे तो आपके मन और इंद्रियां उत्तेजित हो सकती है ना। जैसे आप अगर आप गांजा या ड्रिंकिंग करते हैं तो क्या होगा, आप उत्तेजित हो जाओगे, आप अपना चेतना खो बैठोगे, इसलिए मना किया गया। आध्यात्मिक जीवन के लिए खतरा है तो इसलिए मना किया गया। अब हम उसको रिसर्च के द्वारा, साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा नहीं प्रूव कर सकते, लेकिन अगर आप करेंगे तो आपको नुकसान होगा, इसलिए मना किया गया। नहीं ऐसा नहीं, कलि संतरण उपनिषद में लिखा हुआ स्पष्ट रूप से है ना, पहले राम नहीं आए थे।
लेकिन जिस तरह से कहानी हम सुनते आ रहे हैं उसमें तो रामायण मतलब,
आप कहानी सुनते आ रहे हो लेकिन कहानी सुनने का तरीका होता है ना, तो शास्त्रों को अच्छे से अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले द्वापर आता है, फिर त्रेता आता है, फिर कलयुग, केवल इसी बार जो है पहले त्रेता आया है उसके बाद द्वापर आया है। वास्तव में जो युगों का चक्र है वो सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, लेकिन इस बार स्पेशल चेंज हुआ है ना, और पहले त्रेता और उसके बाद द्वापर है। इसको
भगवान कितने चेंज कर दिया,
भगवान चेंज करते हैं, क्योंकि ये जब भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं तो स्पेशली स्वयं जब भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं तो ऐसा होता है। लेकिन इसमें भी एक और भी बात है कि ऐसा नहीं कर सकते कि कौन पहले आए कौन बाद में, क्योंकि ये चक्र है, समझ बात को। जैसे अभी सतयुग आया त्रेता द्वापर कलयुग, अभी फिर सतयुग आएगा तो कौन पहले आया, सतयुग या कलयुग, कौन पहले और कौन बाद में, सही है? इसलिए आप गणना नहीं कर सकते ऐसे ना, वो तो चक्र है। वो भगवान जब भी कलयुग द्वापर आएगा तो उसमें कृष्ण अवतार लेंगे, और जब भी त्रेता आएगा तो भगवान राम का अवतार लेते हैं, शेड्यूल है।
मर्जी से तो अगर जो मनुष्य के जीवन में अगर जो अच्छाई होती है, जितना अच्छा कार्य होती है तो उनका पे दिया जाता है, बुरे कार्य होते हैं तो क्या उनका ही सारा प्रभाव?
हाँ, जैसे बहुत अच्छा प्रश्न है इनका कि अगर भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है तो फिर हम बुरा जो कार्य करते हैं वो भी भगवान की इच्छा से ही कर रहे हैं, तो फिर उसकी सजा हमें क्यों दी जाती है, लेकिन भगवान को दी जानी चाहिए नहीं? तो इसका कारण है, देखिए ध्यान से समझिए इसको। जैसे कि आप बिना बंदूक के किसी का मर्डर नहीं कर सकते, ठीक है, AK-47 राइफल चाहिए। जैसे कि अभी आप देखिए क्राइम जो हुआ था बॉम्बे में, जो अटैक हुआ था टेररिस्ट का, तो उसमें AK-47 राइफल यूज हुआ था। वो राइफल कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है ना, पुलिस कभी यूज नहीं करती है AK-47, केवल आतंकवादी ही यूज करते हैं, लेकिन बनाता कौन है? गवर्नमेंट बनाती है। तो गवर्नमेंट के इच्छा के बिना आतंकवादी AK-47 राइफल यूज नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट आतंकवादियों के लिए नहीं बनाती है, समझ बात को। तो उसी तरह से, लेकिन उसका मिसयूज किया जा सकता है ना? तो भगवान की इच्छा के बिना पता भी नहीं हिलता, लेकिन भगवान जो है अगर कोई जीव जो है वो जिद करता है गलत करने का, भगवान मना करते हैं उसको है ना, लेकिन हम जब जिद करते हैं तो भगवान जो अलाउ कर देते हैं, लेकिन जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ देते हैं। अच्छा, जैसे कि कोई बच्चा है अगर चॉकलेट खाना चाहता है, पापा बोलते हैं पापा बेटा चॉकलेट मत खाओ दांत सड़ जाएंगे, तो बेटा बोलता है नहीं मैं तो खाऊंगा, तो पापा के पास क्या ऑप्शन, दो ही ऑप्शन है, या तो एक थापड़ मारे उसको बोलेंगे चुप चुपचाप जाके बैठ जाए, या दूसरा बोलेंगे ठीक है चलो खा लो, दे दिया और बाद में दांत जब सड़ जाएगा तब दर्द होगा उसको, तो उसको समझाएंगे भगवद्गीता का उपदेश देंगे। सुन बात को कि देखो बेटा बताया था ना पहले तुम्हें समझ नहीं आया, उसके बाद डॉक्टर के पास बिल देखो ले जाना पड़ेगा, पहले तो चॉकलेट के लिए पैसा खर्चा करना पड़ा, अब डॉक्टर के पास पैसा खर्चा करना क्योंकि तुम्हारी गलती के कारण, उसने समझा नहीं समझ। अब दोनों में से कौन तरीका अच्छा है, क्योंकि अगर थप्पड़ मार देंगे तो बेटा ये भी सोच सकता है कि अरे मेरे पिताजी मुझे प्रेम नहीं करते, है एक चॉकलेट ही मांगा था उसके लिए मार दिया थप्पड़, उसको समझ नहीं आ रहा कि वास्तव में प्रेम है उनका थप्पड़ मारने में, क्योंकि वो उस स्तर पे नहीं है, उसको परिणाम पता नहीं, इसलिए भगवान जो है उसको सैंक्शन कर देते हैं, ठीक है तू गलत कर, भगवदगीता में बता रखा है ये गलत है मत करो, लेकिन तो भगवान की इच्छा जो है वो भगवदगीता में लिखी गई है, भगवदगीता के नियम के विरुद्ध अगर आप करते हैं तो भगवान की इच्छा नहीं वो आपकी इच्छा है ना, और उसके परिणाम आपको होगा, भगवान सैंक्शन करते हैं है ना, भगवान सैंक्शन करते हैं, भगवान को गलत भी सैंक्शन करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि उन्होंने आपको स्वतंत्र इच्छा दी है, आप उसका मिसयूज करोगे भगवान आपको मना करेंगे, लेकिन जब जबरदस्ती चाहोगे तो फिर बोलेंगे ठीक है ले लो, लेकिन आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, रिएक्शन आएगा, तो इसलिए जिम्मेदार नहीं, नहीं तो सब आप मर्डर करो और जब कोर्ट में आपको लाया जाए तो आप बोल दो जज से कि ये तो मैंने नहीं किया, सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान ने करवाया मुझसे, नहीं बोल सकते तो वो भी तो मजिस्ट्रेट भी बोलेगा तो ठीक है, तो भगवान की इच्छा से नियम भी बना है कि जो मर्डर करेगा उसको फांसी की सजा दी जानी चाहिए, तो भगवान की इच्छा से मैं आपको फांसी की सजा देता हूँ, समझ रहे,
भगवान ने
कहा था कि सब कुछ पहले से निश्चित है, हाँ, इस आदमी से कहे थे जो प्लान है मरना तो है ही, कौरवों को धर्म की स्थापना होनी इसके लिए अवतार हुआ है, इसलिए बोले निमित्त मात्र भव सभ्य साथी, अगर अर्जुन अगर निमित्त नहीं बनते तो कोई और बनेगा, लेकिन कार्य तो होगा। जहां तक बात है निर्धारित है सब कुछ, तो सब कुछ निर्धारित है लेकिन उसमें परिवर्तन भी होता है, जो निर्धारित है उसमें उसको बदला भी जा सकता है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपने आपका कल एग्जाम है, आपसे दो दिन बाद एग्जाम है, ठीक है, तो आज तक आपने जितनी पढ़ाई की उसके अनुसार आपका निर्धारित है कि इतना परसेंट मार्क्स, अगर मान लीजिए अगर 10 चैप्टर हैं आपने 8 चैप्टर पढ़ाए तो आपका निर्धारित है कि 80% मार्क्स आपका आएगा, निर्धारित हो गया, अगर आप और पढ़ाई नहीं करेंगे तो निर्धारित हो गया, जैसे जैसे पढ़ाई करते जाएंगे वो निर्धारित चीजें क्या होती हैं बदलती जाएंगी, आप समझ बात को, तो हर क्षण आप निर्धारित कर रहे हो फ्यूचर को, आज अगर नहीं इच्छा किया तो आपका फ्यूचर बदल जाएगा, अभी तक की इच्छा के अनुसार फ्यूचर निर्धारित हो चुका है, लेकिन अगर अभी आपने उसमें चेंज करने का प्रयास किया तो चेंज भी कर सकते हैं, आप समझ बात को, क्लियर हुआ, अभी तक आपने जितनी मेहनत की है उसके अनुसार आपका फ्यूचर निर्धारित है, लेकिन अगर आप उसको बदलेंगे, आज से अगर आपने प्रयास करना शुरू किया कि नहीं मुझे अपने फ्यूचर को क्या करना है सुधारना है, तो आप प्रयास जब करना शुरू करते हो अपने तरीके से एक्स्ट्रा, तो फिर आप उसको बदल भी सकते हो, ये बताया गया है, तो इसमें आपकी इच्छा के ऊपर भी कुछ आपको भी महत्व दिया गया है ना, अगर आप चाहें तो इसको बोलते हैं कर्म, कर्म को बदला जा सकता है, भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि ईश्वर जीव प्रकृति और काल ये चार चीजें जो है वो बदली नहीं जा सकती, लेकिन जो पांचवा चीज है कर्म है उसको बदला जा सकता है। तो आप इसको परिवर्तित कर सकते हैं अपने कर अपनी इच्छा के दृढ़ इच्छा शक्ति का उपयोग करके फ्यूचर को आप बदल सकते हैं। नहीं तो हम लोग क्यों बैठे रहते हैं? अगर अगर सब कुछ निर्धारित होता है तो फिर जज और कोर्ट न्यायालय क्यों होता है कि नहीं? ऐसा नहीं है तो आपकी इच्छा है, फिर ट्रेनिंग क्यों दी जाती लोगों को अच्छा बनने की? बुरा है, बुरा ही करेगा, ठीक है करने एनीवे जो निर्धारित है वही होगा, तो फिर हम सब क्यों प्रयास करें ना? तो ऐसा नहीं, और उस प्रयास का बहुत महत्व है और प्रयास से आप अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं। ठीक है, आसक्ति है इसलिए तो कितना आसक्ति है उसके अनुसार समय लगता है मन को नियंत्रित करने में, है ना? लेकिन ये धीरे धीरे चैंटिंग करते रहिए तो भाग जाएगा सारा ध्यान, सारी लड़कियों का ध्यान या लड़कों का ध्यान सब भाग जाएगा। प्रयास करना है, प्रैक्टिस करना है, एक दिन में नहीं होगा, ओवरनाइट है, रेगुलर करना है। कितना माला करते हैं आप? चार माला से क्या होगा, ऊंट के मुंह में जीरा। 16 माला करना पड़ेगा आपको, 16 माला हम लोग करते हैं फिर भी हमारा मन भागता है, पर पहले से अच्छा है लेकिन भागता है बीच बीच में। तो आप चार माला करते हो, सोच रहे हो मन को कंट्रोल कर लें, विश्वामित्र जी 10,000 साल तक तपस्या करके नहीं कर पाए, पूरा कंट्रोल है ना? तो हमें क्या करना है, रेगुलर करना है ना, और रेगुलर कम से कम प्रभुपाद ने बोला 16 माला। अगर आप रियली सीरियस हैं मन को नियंत्रित करने के लिए तो आपको 16 माला का जप रोज करना है, हैं? और प्रयास कीजिए कि भक्तों के संग में कीजिए, तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि वायरस है ना बड़ा स्ट्रांग है ना? आजकल कलयुग में मन को कंट्रोल करना आसान नहीं है, हर जगह जो है वो केवल सेक्स ही सेक्स प्रोपगेटेड है। आप जहां भी नजर डालो सेक्स ही नजर आएगा। ऐसी स्थिति में आपको मन को कंट्रोल करना आसान है नहीं? इसके लिए आपको आईसीयू में रखना पड़ेगा, इंटेंसिव केयर यूनिट है ना? तो आप लोग आना चाहिए, इंटेंसिव केयर यूनिट है मंदिर, है ना? यहाँ पे स्पेशली ये सेमिनार हॉल है, यहाँ पे आके भक्तों के साथ बैठ के टेम्पल हॉल में संडे मॉर्निंग को चैंटिंग करके आप देखिए ध्यान पूर्वक आपका मन कंट्रोल होगा, क्यों नहीं होगा? तो और भी कई बातें आप मिलके, आप किसके टच में हैं? हाँ SSP। तो आप उनके उनसे पूछिए डिटेल में कि क्या क्या कर सकता हूँ अगर आप सीरियस हैं। और कोई प्रश्न? हाँ हाँ, कर्म का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता है? मिल जाएगा। हाँ एक्चुअली क्या होता है इसका कारण ये है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछाएगा। देखिए सजा देने के लिए भी कुछ योग्यता होनी चाहिए आपको। अब मान लीजिए कि आपको आपको आपने ऐसा पाप कर दिया कि आपके 100 पुत्र होंगे और उसकी मृत्यु होगी और उसे जितना दुख होगा उतना दुख आपको देना है, है कि नहीं? तो उसके लिए आपको 100 पुत्र पहले देने पड़ेंगे ना, है कि नहीं? इस जन्म में तो आप 100 पुत्र होंगे नहीं, फिर आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा और एक पुत्र प्राप्त करने के लिए बहुत पुण्य करना पड़ता है। तो 100 पुत्र प्राप्त होने के लिए आपको पुण्य, जैसे धृतराष्ट्र था, धृतराष्ट्र का उसने 100 जन्म पहले पाप किया था, उसने प्रश्न पूछा, गांधारी ने कृष्ण से प्रश्न पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, हमारे सब पुत्र को क्यों मर गए? तो कृष्ण ने बताया कि आपने ये पाप किया था, 100 जन्म पहले लेके गए उनको और बताया कि देखो वहां पे आपने एक जानवर के 100 बच्चों को मार दिया, तो उसका परिणाम आपको मिलना था, आपके भी 100 पुत्र होंगे, लेकिन 100 पुत्र प्राप्त करने के लिए आपको 100 जन्म लेने पड़े, ताकि उसमें आप पुण्य करो, ताकि 100 पुत्र प्राप्त करने का पुण्य इकट्ठा हो जाए, फिर आपको 100 पुत्र दिया गया, फिर उस 100 पुत्र को मारा गया, ताकि उसका पुत्र को समझ बात है। तो इस तरह से दुख देने के लिए भी कुछ योग्यता होनी चाहिए। तो इसलिए अब मान लीजिए कि आपको ऐसा शरीर दिया जाए, दुख देना है कि आपको पर्वत से पटका जाएगा 10 बार, और जितना दर्द होगा उतना आपको दर्द आपको देना है, लेकिन हमारा तो स्थिति है कि अगर एक बार पटक दिया जाए पर्वत से तो मर जाएंगे, तो एक जन्म में तो उतना दुख मिलेगा नहीं, 10 बार पटकना पड़ेगा, 10 बार जन्म लेना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हमें एक जन्म में कभी कभी कुछ ऐसे कर्म है जिसका किसी जन्म में फल मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे कर्म है जिसका कि अगले जन्म मिला, और कुछ ऐसे कर्म है जिसका कि कई जन्मों बाद पकता है फल। तो ये डिपेंड करता है कौन सा बीज है उसके अनुसार कौन सा फल है, तो उतना ही टाइम लगेगा ना। और कुछ ऐसे फल होते हैं जो एक साल में आप बीज डालिए और तुरंत उग जाता है, कि नहीं, 2 महीने में उग जाएगा। कुछ ऐसे बीज हैं जो डालने पे 1 साल लग जाता है, और कुछ ऐसे जैसे आम का पेड़ है, अगर आप आज बीज लगाओगे तो 10 साल के बाद फल निकलेगा, है कि नहीं। उसे डिपेंड करता है कि कौन सा बीज है, किस प्रकार का कर्म है, उसके अनुसार आपको उतना ही दिन के बाद फल मिलेगा। क्लियर? एनी अदर क्वेश्चन? हाँ हाँ,
वेरी गुड क्वेश्चन।
हम लोग कोई जरूरी नहीं है कि भगवान आते हैं, हमारा कोई गारंटी नहीं है, हमारा जो है अलग चीज सिचुएशन है। अगर आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका क्या होगा, है ना। अगर आप भक्ति के नियमों का पालन करके अगर आप इसी जन्म में हो सकता है कि आप इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं, है ना, और भगवान के धाम में जा सकते हैं, है ना। तो अगर नहीं हो पाया तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा, है? तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो हमारे भगवान इसी को सिखाने के लिए आते हैं कि हमें कैसे इस चक्र से बाहर निकला जाए। अगर हम उस नियमों का पालन करेंगे, उस विधि का पालन करेंगे, तो हमें जरूरत नहीं फिर से जन्म लेने की। और एक प्रश्न क्या था? हाँ, उसको नलीफाई नहीं, उसको जलाया भी जा सकता है पूरी तरह से, है ना। जलाया कैसे जाए पाप कर्मों को? तो बताए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से, और दोबारा पाप नहीं करने का प्रयास करने से। ये नहीं कि आज माला किया फिर कल जाके जम के करेंगे पाप, फिर परसों माला कर लेंगे, है ना। तो भगवान को हम चीट नहीं कर सकते, है ना। तो भगवान देखते हैं कि किस नजरिए से आप माला कर रहे हो, है ना। तो अगर आप जैसे क्रिश्चियंस हैं ऐसा ही करते हैं, वो 6 दिन तक पाप करेंगे और 7वें दिन चर्च में जीसस क्राइस्ट के सामने उनके आगे अगर आप सारे पाप बोल दो उनके सामने, तो आपके पाप जीसस क्राइस्ट पे चले जाएंगे। तो बोलते हैं बड़ा बढ़िया है, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया जीसस क्राइस्ट ने, तो 6 दिन जाओगे पाप करेंगे, 7वें दिन जाके जीसस क्राइस्ट को बोल देंगे अब आप ले लीजिए, फिर अगले दिन आऊंगा, अगले दिन, है ना। तो इसलिए जीसस क्राइस्ट क्या मूर्ख है? तो जो व्यक्ति सिंसियर है, सिंसियरली इज ट्राइंग टू इम्प्रूव, तो कृष्णा विल टेक रिमूव हिज ऑल सिंस, है ना। पॉइंट इज दैट हाउ सिंसियर यू आर, यू शुड नॉट बी अ चीटर, यू शुड नॉट ट्राई टू चीट गॉड, बट वी शुड बी वेरी जेन्युइनली ट्राइंग टू बिकम राइटियस गुड, जेन्युइनली ट्राई करना चाहिए, और उसके बाद में अगर गलती होती है तो उसके लिए हम भगवान से पश्चाताप कर सकते हैं, लेकिन ये करना सिखाना चाहिए कि भगवान हमें आप क्षमा कर दीजिए, लेकिन शक्ति दीजिए, मैं नहीं करना चाहता हूँ इसको आगे से, है ना, और आप मुझे शक्ति दीजिए कि मैं, और दृढ़ता पूर्वक हमें नहीं करने का प्रयास करना चाहिए, पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम उस गलती को दोबारा ना करें। और कोई प्रश्न? जैसे इंडिया में बहुत है, गंगा स्नान करना जाना है, अभी कुंभ मेला में चलो, सारे पाप धो के आ जाते, फिर करेंगे उससे नहीं पाप, गंगा जी लगी नहीं पाप, आप पागल नहीं गंगा जी।
कोई नॉनवेज खाता है तो हमारा शरीर पांच तत्वों से बना है, तो इसमें से क्या चीज नॉनवेज है जो नॉनवेज खाता है, हम कहते हैं कि वो नॉनवेज खाता है,
नॉनवेज जो वेज नहीं है,
तो ये तो शरीर पांच तत्वों से बना है, तो हम पांच तत्व भी,
तो पांच तत्वों से बना है, तो पांच तत्वों से जहर भी बना है तो खाई है, क्यों नहीं खाए, अभी पांच तत्वों से बना है पांच तत्वों से ही सब कुछ बनता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके लिए मना है ना, तो आपको नहीं खाना है, इसलिए नहीं खाना है, ठीक है। तो मांस जानवरों का शरीर, उनको कष्ट होती है ना, आप जब काटते हो जानवर को तो पीड़ा नहीं होती है, आपको काटूंगा तो आपको पीड़ा नहीं होगा, आपको काटने पे जेल में बंद कर दिया जाएगा, जानवर को काटने पे कोई प्रॉब्लम नहीं, इनाम दिया जाएगा। ये कहाँ का न्याय है, क्या जानवर को पीड़ा नहीं होती, आप देखो जाके काटते समय,
लेकिन मोहम्मदंस में तो ऐसा कहते नहीं
है, मोहम्मदंस कहें या न कहें आप देख तो रहे हो ना, आपके आंखों के सामने हो रहा है, आप क्या देख रहे हो, कहने से क्या होता है, उनके धर्म में भी मना है मीटिटी,
कहते नहीं मना,
कहने से क्या होता है, आप पढ़ो कुरान पांचवा अध्याय जाके पढ़िए, पहले पांच श्लोक क्या लिखा है, मक्का में आज भी एनिमल किलिंग अलाउड नहीं है, आज भी स्पष्ट लिखा हुआ, आज भी कोई जानवर का आप नहीं मार सकते मक्का के लिए, क्यों नहीं मार सकते, इतना अच्छा काम है तो होना चाहिए मक्का में, तो मीट ईटिंग इतना अच्छा है, मक्का होली प्लेस है, तीर्थ स्थल में तो सारे अच्छे काम होने चाहिए, तो अगर ये इतना अच्छा काम है मीट ईटिंग तो वहां पे तो जरूर होना चाहिए, फिर मना क्यों किया गया, पढ़िए कुरान को ध्यान से, ऐसा नहीं, प्रॉफेट मोहम्मद क्या खाते थे, मीट खाते थे, उनका जीवन स्टाइल पढ़िए, लाइफ स्टाइल, वेजिटेबल्स खाते थे, वेजिटेरियन फूड, डेट्स खाते थे, खजूर ब्रेड ये सब खाते थे, इमरजेंसी सिचुएशंस में कभी एक बार ऐसा हो सकता है, हुआ हो, उसको एक्सेप्शंस को हमने जनरल रूल बना दिया और जनरल को एक्सेप्शंस बना दिए, यही सब चलता है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इसलिए उनको भी अच्छा लगता हो तो ध्यान पूर्वक अगर आप पढ़ेंगे तो किसी धर्म में अलाउड नहीं, जीसस क्राइस्ट ने क्लियर बोला था दाउ शैल नॉट किल, आपको हत्या नहीं करनी चाहिए, फर्स्ट कमांडमेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट, तो मानने के ऊपर है, अब तो बोलने को तो कुछ ही बोल सकते हैं, हिंदू भी खाते हैं, खाते कि नहीं, एक व्यक्ति का नाम था गोपाल कृष्णन, वो गाय का मांस खा रहा था, मेरे वकील नाम है गोपाल और खा रहे हैं वो मांस, तो क्या कहेंगे आप, और यथार्थ क्या, सही है जो लिखा है सही है, हाँ है क्या,
हम नहाते हैं तो फायदा
भी फायदा क्यों नहीं है, अगर आपको भावना होनी चाहिए वैसे भावना के साथ, यानी कि नहा के फिर जाके पाप कीजिए तो आप चले जाएंगे, ऐसा नहीं है, तो वहां पे वो लिखा है, लेकिन कहीं और तो ये भी लिखा है कि अगर आप उसके बाद पाप करते हैं तो फिर आप नहीं जाएंगे ना, लेकिन अगर पाप नहीं करते हैं तो फिर आप फिर चले जाएंगे, ये करने का मतलब है, पहले के जो पाप है वो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन फिर से करेंगे तो फिर आगे के फिर क्रिएट हो गए ना, फिर कैसे जाएंगे? आज तक आपने जितना किया था वो तो नष्ट हो गया स्नान करने से, लेकिन उसके बाद आपने तुरंत फिर कर दिया है। अभी हाथी क्या करता है? हाथी जाता है, नहाता है जलाशय में, फिर बाहर आता है अपने ऊपर धूल डाल देता है, तो क्या फायदा है? तो साफ तो हो गया था लेकिन फिर से डाल दिया उसने। इसमें सरजू का दोष है या आपका दोष है? शास्त्र का दोष है, आपका दोष है। शास्त्र तो साफ कर दिया आपको, लेकिन आप फिर से कर रहे हो। क्लियर हो गया? और क्या
वेजिटेबल्स
लाइफ है? लाइफ है लेकिन अलाउड नहीं है हमें, है ना? जैसे कि जीव जीव से जीवन, इस जीव संसार में रहने तो कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा, बिना खाए तो जीवित रह नहीं सकते। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि मांस खा के जीवित रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई बिजनेस करते हो, है ना, तो कोई भी जैसे कोई भी आइटम आता है आपकी दुकान पे, तो आप उसको सेल करते हो, तो जितना पे आपने खरीदा है उतना पे तो आप नहीं बेच सकते ना, बेचेंगे आप उतना पे? कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए ना। तो इसलिए क्या होता है उस पर लिखा रहता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब कि कुछ मार्जिन दिया रहता है उसमें, है कि नहीं? इतना तक आप बेईमानी कर सकते हैं, वो भी बेईमानी ही है कि नहीं? वास्तव में ईमानदारी तो है कि जितना में खरीदा उतना बेच दो, लेकिन चूंकि आप जीवित नहीं रह सकते अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए सरकार ने कुछ अलाउ कर दिया, ठीक है इतना आप कर सकते हो आपकी मजबूरी को देखते हुए, है कि नहीं? तो फिर मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे आप बेच सकते हो। आपने सोचा अच्छा ठीक है 2 रुपये फायदा हो रहा है, ये भी तो चीटिंग है, तो 2 रुपये चीटिंग करो चाहे 100 रुपये करो, बात बराबर है। तो 10 रुपये की चीज को आप अपना MRP लगाते हो उसपे, ठग 100 रुपये, 10 रुपये के बदले 100 रुपये, तो क्या होगा? आपको सरकार क्या करेगी? कंज्यूमर कोर्ट में आपको पकड़ा जाएगा। तो आप अपना नियम नहीं बना सकते, है कि नहीं? तो वो भी बेईमानी है, 2 रुपये की भी चोरी चोरी है और 1 करोड़ रुपये की चोरी भी चोरी है। लेकिन 2 रुपये आप चुराएंगे तो कोई चिंता परवाह भी नहीं करेगा उसमें, करेगा? लेकिन अगर आप 1 करोड़ चुरा के देखे किसी का, तो दोनों चोरी है लेकिन एक जो है वो जघन्य चोरी है, जघन्य अपराध, उसको माफ नहीं किया जा सकता, उसकी भयानक सजा है। तो उसी तरह से पौधों में भी लाइफ है, जानवरों में भी लाइफ है, लेकिन पौधों का अलाउ किया गया है, वो भी जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता से ज्यादा नहीं, लेकिन जानवरों का अलाउ नहीं किया गया है क्योंकि उसमें ज्यादा पाप है। और कोई प्रश्न? हाँ आप
जो पूछिए। प्रभु जी, ये 16 माला जो करना है, कम से कम 16 ही माला क्यों किया जा सकता है?
कम से कम
ये कम भी कर सकते हैं या उससे ज्यादा किया जा सकता है?
नहीं, 16 माला ही करना है, कम से कम 16 माला करना है, क्योंकि जैसे बताया जाता है ना कि आपको ये रोग हुआ है तो आपको ये टैबलेट इतना MG का टैबलेट आपको चाहिए, आप उसको इतना MG का, कम भी ले सकते हैं ज्यादा भी ले सकते हैं, अपने मन से हम डिसाइड नहीं कर सकते ना, जो डॉक्टर बता रहा है हमको उसको स्वीकार करना है। तो डॉक्टर बता रहा है कि 16 MG सफिशियंट है, 16 माला सफिशियंट है, तो 16 माला सफिशियंट है, उससे ज्यादा कम से कम, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, तो कम से कम 16 माला, अब ज्यादा से ज्यादा कर सकते तो और तेजी से रिकवरी होगा, है ना? तो ये नियम बनाए प्रभुपाद ने, सेट किया, आचार्यों का नियम है, हमारी स्थिति को देखते हुए उन्होंने सेट किया स्टैंडर्ड, है ना? तो दृढ़ता आएगी जब आपको हायर टेस्ट आएगा, ना? जैसे कि अगर आप जो है वो आपको आप अगर अगर लड्डू खा रहे हैं, है ना, आपके सामने अगर गुलाब जामुन आ जाए तो आप क्या करोगे? गुलाब जामुन खाएंगे ना? हाँ, फिर आप गुलाब जामुन लड्डू की तरफ देखेंगे भी नहीं, उसी तरह से दृढ़ता की कोई आवश्यकता ही नहीं है इसमें। गुलाब जामुन खाने के लिए दृढ़ रहना पड़ेगा हमें, ऐसा थोड़े, वो तो नेचुरल है। तो उसी तरह से जब आध्यात्मिक जीवन का आप पालन करेंगे तो आपको उच्च रस आएगा, हायर टेस्ट मिलेगा। जब हायर टेस्ट मिलेगा तो लोअर टेस्ट के प्रति आकर्षण जो है अपने आप कम हो जाएगा। तो ये जो है वो इंटरमीडिएट फेज है, उसके लिए आपको जो है वो साधना स्ट्रांग करना पड़ेगा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। उसके लिए भी तरीका है तो उसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। स्पेशली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस विल बी वेरी स्ट्रांग बिफोर यू गो आउट इन द असेंबली ऑफ माया। यू हैव टू बी वेल प्रोटेक्टेड बाई ऑल दी वेपन्स, आपका सब हर जगह प्रोटेक्ट करके जाना पड़ेगा, क्योंकि माया कहीं से भी अटैक कर सकती है। पूरा एकदम शरीर को एकदम सुसज्जित करके जाना पड़ेगा, उसके लिए शुरू शुरू में ही सुबह सुबह उठ के साधना स्ट्रांग करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए बता सकते हैं हम प्रैक्टिकली कर मीट देन वी कैन डिस्कस हाउ टू। लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज वी हैव 10 मिनट्स प्रेजेंटेशन फॉर यू ऑल, वी कैन रन प्रेजेंटेशन हियर। या चलते रहेंगे तो अगर भक्ति में आ गए तो फिर उनके पाप नष्ट हो सकते हैं, है ना। जैसे कि ये पापी को दुख देना भगवान नहीं चाहते किसी को भी। जैसे कि जेल में व्यक्ति को बंद क्यों किया जाता है, उसको तो सुधारने के लिए, नहीं कि सरकार को शौक है कि इसकी पिटाई की जाए। ऑफकोर्स आजकल ज्यादातर जेल में जो लोग यात्रा निर्दोष होते हैं, लेकिन वास्तव में अगर जो जेल का प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसमें किसी को मारना नहीं लिखा है कि मारना है इसलिए जेल बना रहे हैं, नहीं। जेल का उद्देश्य क्या है, सुधार। तो अगर बिना मारे व्यक्ति सुधर जाए तो उसको क्यों मारने की जरूरत है, समझ बात को। तो उसी तरह से पाप कर अगर व्यक्ति समझ जाए, एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मैंने पाप किया है और आगे से नहीं करूंगा, है ना, तो फिर उसको रिहा किया जा सकता है समय से पहले, है ना। तो होल आइडिया इज टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट यू शुड नॉट कमिट सिन, आपको पाप नहीं करना चाहिए। अगर आपने किया है तो उसके लिए मेथड्स भी बताए गए जिसके द्वारा फटाक से सारे पाप एक ही मिनट में खत्म हो जाएंगे, है ना। लेकिन वो तभी अप्लाई होगा जब आप शुद्ध होने का पूरा जेन्युइन आपके अंदर डिजायर आएगा। हमारे जेन्युइन डिजायर नहीं आता है, सोचते हैं जब दुख आता है तो सोचते हैं आप आगे से पाप नहीं करेंगे, जैसे ही थोड़ा अच्छा सिचुएशन होता है सोचते हैं ठीक है थोड़ा कर लेते हैं, तो जेन्युइन डिजायर नहीं। जेन्युइन रहेगा तो भगवान सारे पापों को एक क्षण में माफ कर सकते हैं। देखते हैं भगवद गीता का लास्ट श्लोक यही कर रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, चिंता मत करो मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम मेरी शरण में आ सारे धर्मों को त्याग कर। लिख रहे एक क्षण में मुक्त कर सकते हैं भगवान, लेकिन आपको सारे धर्मों को त्याग के शरण में आना पड़ेगा भगवान, केवल कृष्ण के शरण में आना पड़ेगा, तब आपको क्षण होगा, ठीक है।
शास्त्रों में
कलयुग
की समाप्ति की भी तिथि
लिखी हुई, हर चीज लिखा हुआ है, हर चीज है शास्त्रों में, हमारे भी समाप्ति की तिथि लिखी हुई है।
शास्त्रों को पढ़े तो हमें पता चलेगा,
सब पता चल जाएगा। भागवत पढ़िए, एग्जैक्ट डेट बताया गया है किस दिन कलयुग आएगा, किस दिन कलयुग समाप्त होगा, किस दिन सत्ययुग शुरू होगा, एग्जैक्टली लिखा हुआ है। 4,32,000 वर्ष के बाद कलयुग समाप्त हो जाएगा, फिर सत्ययुग आएगा। हर युग का उम्र है, कलयुग का 4,32,000, द्वापर का 8,64,000, त्रेता का 12,96,000 और सत्यु का 17,28,000 है, टोटल 43,20,000 है। इस तरह से आप देखिए, इस तरह से पूरा बताया गया। फिर ये एक चक्र हुआ, इस तरह से 1,000 चक्र होते हैं। 1,000 चक्रों का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उतने की ब्रह्मा जी की एक रात होती है। इस तरह से ब्रह्मा जी जो है 100 साल तक जीवित रहते हैं, फिर उनकी मृत्यु होती है तो महाप्रलय होता है, फिर सारा ब्रह्मांड महाविष्णु के शरीर में प्रवेश कर जाता है। फिर एक ये सारा होता है केवल महाविष्णु के एक सांस के, एक सांस लेते हैं उसी बीच में सब हो जाता है। फिर जब अगला सांस छोड़ते हैं फिर से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और फिर सांस लेते हैं, फिर ब्रह्मा जी मर जाते हैं। तो इस तरह से सर डिटेल में दिया हुआ है, पढ़ने की आवश्यकता है। शिव जी महाविष्णु के शरीर में, महाविष्णु के प्लान से शिव जी प्रकट होते हैं और प्रकृति में हलचल करते हैं, फिर उससे प्रकट संततियां उत्पन्न करते हैं शिव जी पर। फिर शिव जी तो विस्तार है ना महाविष्णु से, सदा शिव जो है महाविष्णु के विस्तार है। फिर उनमें प्रवेश कर जाते हैं तो उनका कार्य पूरा हो जाता है। कौन? हाँ कृष्ण तो जो महाविष्णु करते हैं, कृष्ण नहीं। वो एक व्यक्ति अपने विस्तार कर देते हैं महाविष्णु। आप देखिए ये सबका, मुझे तो बांसुरी बजाने से भगवान को सबका टेंशन नहीं है। अकाल मृत्यु जब मृत्यु बिना काल के हो जाए वो अकाल मृत्यु में है? कैसे मतलब? जैसे एक्सीडेंट हो गया, सुसाइड हो गया, ये सब अकाल मृत्यु चल रहे हैं क्या? इट्स नॉट रनिंग, नहीं है।
ये अगर ये होगा हमारे किस्मत पर तो ये मिलेगा।
हाँ,
इसके लिए हम विशेष एफर्ट करना पड़ेगा।
हाँ किस्मत में होगा वो मिलेगा, लेकिन किस्मत को आप प्रयास कीजिए बदलने का। लेकिन मेन जो प्रयास होना चाहिए वो किस्मत क्या है। किस्मत तो वास्तव में जो आध्यात्मिक जीवन आप आएंगे तो कभी किस्मत बदल सकती है। स्पेशल मर्सी मिलेगी आपको जब प्रार्थना करेंगे, आपको शक्ति मिलेगी, शक्ति के द्वारा आप बदल सकते। जैसे कई ऐसी चीजें करते हैं जो मर्सी मिलती है, निर्धारित नहीं हो सकता, हो सकता है आपके प्रयास से। अगर भगवान को प्रसन्न कर लिया तो भगवान हमारे सन्यासी तो 28 साल की उम्र मरना था एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, लेकिन जब भक्ति करने लगे 28 साल की उम्र में एग्जैक्टली उनको बहुत बड़ी बीमारी हुई, ऑलमोस्ट मरने की कगार पर पहुंच गया था, लेकिन भगवान ने उन्हें बचा लिया। अभी उनकी उम्र जो 60 साल है, लेकिन अभी भी एकदम कीर्तन करते हैं। तो बता दें कि जब आप ताली बजाते हो ना, जब हम हरे कृष्ण बोलते हैं, आपके हाथ की रेखाएं बदलती है, इसलिए ताली बजाने में इसकी चाहिए। भगवान सारी चीजें चेंज करते हैं। कृष्ण भक्ति में बहुत शक्ति है। अविश्वास क्योंकि विश्वास करना चाहिए। हाँ जैसे सुसाइड और ये सब लिखा नहीं रहता है, वो आप लिखते हैं ना। उससे पहले आप डिसाइड कर सकते हैं, भगवान ने डिसाइड कर रखा है कि इतने दिन मर, लेकिन आप डिसाइड कर नहीं, मुझे आज ही मर रहा तो मरिए, क्या करेंगे। एक्सीडेंट और सुसाइड ये दोनों जनरली समय आ गया। एक्सीडेंट में भी कई प्रकार के हैं, अलग अलग तरीके के हैं, उसमें वैरायटी है। कुछ जो है वो निर्धारित है, कुछ लेकिन सुसाइड तो पूरा आपका क्रेडिट है, उसमें भगवान का हाथ नहीं है।
ऐसा भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण की भक्ति होती है
जीवन के मतलब लगता है कि जो मनुष्य का जीवन ही है जो है पूरे जो चौरासी लाख में जीवन, उसके बाद अंत समय जब मुक्ति की स्थिति आती है तभी व्यक्ति जन्म से शुरू होकर उन्मुख होता है। हर जगह डॉक्टर मनुष्य रहता है, अंत समय जब मतलब कर्म स्थिति आती है जब मोक्ष की स्थिति आती है
तो अभी वो
अभी कृष्ण का भगवान
नहीं नहीं ऐसा नहीं है। कृष्ण भक्त तो भक्ति करना पड़ेगा, ऐसा थे लास्ट मोमेंट में ही आप कृष्ण भक्त बनेंगे तो हम लोग अभी क्यों कृष्ण भक्त हैं?
नहीं अंतिम पड़ाव नहीं, मतलब कि ऐसा कहा जाता है कि मतलब कई जन्मों से अगर आप मतलब भक्ति में लगे हैं तब आपको संपूर्ण अर्जित होता है कि आप कृष्ण भक्ति
नेचुरली भवनाम जन्म नाम अंत ज्ञानवान वासुदेव सर्वमति सर्वात्मा सुदुर्लभ। तो अगर आप सब लोग कृष्ण भक्ति को अपनाते हैं उसका मतलब कि बाकी सारे प्रोसेस आप पहले कर चुके हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी हो सकता है, जैसे कई कोई जरूरी नहीं है तो कोई व्यक्ति होगा अरे मैं हो सकता है उसका नहीं हो तो क्या उसके लिए कोई आशा नहीं है? नहीं, उसको तुरंत भी अपलिफ्ट किया जा सकता है। अगर भक्ति की कृपा हो जाए तो इस जन्म में भी कई जन्मों के पाप नष्ट हो सकते हैं और कई जन्मों के पुण्य अर्जित करके शुद्ध भक्त बन सकता है कृष्ण का। तो ये कोई जरूरी नहीं है, गुरु बताता है, गुरु बता सकता है कि आपका क्या स्टेटस है, वे चेहरे को देख के बताया जा सकता है। हाँ कृष्ण भगवान मरे थे, कृष्ण भगवान मरे थे, भगवान की लीलाएं दिव्य हैं तो जानबूझ के मरते हैं वो, क्योंकि ताकि अब विश्वास वालों को भी हैं एथेस्टिक नास्तिक लोगों को भी तो कुछ मसाला मिलना चाहिए ये नहीं तो नास्तिक कैसे रहेंगे, उनके लिए भी कुछ मसाला छोड़ के जाना है।
अश्वमेध यज्ञ क्या?
अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ एक यज्ञ है जिसमें कि घोड़े घोड़े की बलि दी जाती है ना, घोड़ा छोड़ा जाता है और वो जो है जो भी उसको पकड़ता है उसको फाइट होता है, उसको अपने अंडर में किया जाता है, उसे कलेक्शन किया जाता है, टैक्स कलेक्शन करके फिर वो राजा यज्ञ करेगा उसको अश्वमेध यज्ञ।
पांडवों ने किया?
हाँ पांडवों ने नहीं किया था, पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था। अलग अलग प्रकार के यज्ञ बताए गए शास्त्र में, उसका डिटेल तो मुझे नहीं पता है, आई एम नॉट यज्ञ एक्सपर्ट, हम केवल संकीर्तन यज्ञ बता सकते हैं, हरे कृष्णा लेकिन ये सब यज्ञ जानने से कोई फायदा भी नहीं कि कर भी नहीं सकते है ना, कलयुग में तो संभव नहीं है, ये सब यज्ञ संभव नहीं करेगी, इसलिए एक ही यज्ञ संभव है नाम कीर्तन से है ना। तो हम यहीं पे विराम देंगे, बहुत लंबा क्वेश्चन आंसर हो गया, सबके क्वेश्चन समोस्ट आंसर हो गए हैं। तो अभी हमारा कैंप है स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कैंप सॉरी कोर्स, तो हम शुरू कर आज कितने लोगों को पता है इसके बारे में चाहिए? अच्छा बहुत कम लोगों को, तो जिन्होंने कम से कम दो को सेशन अटेंड किए यहाँ पे संडे का इवनिंग का, उनके लिए ये कोर्स शुरू किया जा रहा है स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कोर्स। तो ये जो है हर संडे को होगा इसी समय पे, तो इसके लिए हमारे पास कोर्स बुक भी है, कोर्स बुक है और इसके साथ हमारा क्विज भी है, वर्क बुक भी है, क्वेश्चन आंसर के लिए वर्क बुक है और ये हर संडे को हम इवनिंग में करेंगे सेम टाइम पे 4:30 से 6:30। तो जो आप में से इंटरेस्टेड है वो नेक्स्ट लेवल कोर्स है, जैसे ये तो ये चल रहा है अभी इसका नेक्स्ट लेवल है, तो उसमें जो भी आप में से इंटरेस्टेड है, कितने लोगों ने दो या दो से ज्यादा सेशन अटेंड किए हैं यहाँ पे, तो आप लोग एलिजिबल हैं नेक्स्ट कोर्स अटेंड करने के लिए अगर आप चाहें, आपकी इच्छा है तो निर्धारित है, लेकिन आपकी इच्छा आपका निर्धारित हो गया है कि आप स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कोर्स आपको अटेंड करना चाहिए, लेकिन करेंगे कि नहीं वो आपकी इच्छा पर निर्भर है ना, ये हो गया कर्म और इच्छा है। तो कर्म आपका है आप अटेंड कर सकते हैं, लेकिन करेंगे कि नहीं वो आपकी इच्छा की बारे। तो आप सब में से कितने लोग इसको अटेंड करना चाहेंगे? झूठ मत बोलिएगा, सही हाथ उठाना। इंडिया में लोग हाथ उठाने में एक्सपर्ट हैं। तो आप सब जो जो इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, वो खड़े हो जाइए, आगे आ जाइए, जिन्होंने हाथ उठाया था स्टेज पे आ जाइए।
लेकिन
लेकिन पहले पूछना चाहिए। हाँ
हाँ,
एक क्लास अच्छा फर्स्ट क्लास है आपका, अटेंड कर सकते हैं आप एक साल एक क्लास कम से कम अटेंड कर सकते हैं। ऊपर आ जाइए, ऊपर स्टेज पे ऊपर चढ़िए सब लोग, बाकी लोग बैठे रहिएगा। जिन्होंने कम से कम दो क्लास, ये क्या इसके लिए रजिस्ट्रेशन फी है 150 रुपया, ठीक है? इसमें हम लोग कोर्स मटेरियल का कॉस्ट है, ये हम ज्यादा तो नहीं ले रहे हैं आपसे। कोर्स का जो कॉस्ट है वो आपको देना पड़ेगा 150 रुपये है। आप अपना अभी आप कौन रजिस्ट्रेशन करेंगे? प्रतीक प्रभु आपके सामने खड़े हैं, तो आप लोगों का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है, आप लोग उस पर रजिस्ट्रेशन करा दीजिए और एंट्री फीस सबमिट कर सकते हैं। और अभी तुरंत आपको कोर्स मटेरियल मिल जाएगा सारा डिटेल, और उसके अनुसार आप अगले वीक से ऑफिशियली हमारा ये कोर्स शुरू हो रहा है नेक्स्ट वीक से। नेक्स्ट वीक कहाँ? लुधियाना। नो प्रॉब्लम, तो आपका फिर से कवर होगा नेक्स्ट वीक। हम लोग मेकअप क्लास करेंगे जो जो मिस करेगा, ठीक है? तो किसी कारण अगर आपका कोई क्लास बीच में मिस होता है, तो ऐसा नहीं कि उसको गायब कर देना है, उसको कहीं और दूसरे प्रोग्राम में उनको कवर करना है। तो सब प्रभु जल्दी करेंगे थोड़ा,
सब
सबको फॉर्म दे दीजिए। अभी नहीं, तो जिन्होंने नहीं लाया है वो अगली बार दे सकते हैं, तो जिनके पास अभी लक्ष्मी नहीं है पैसा। नेक्स्ट टाइम दे देंगे तो आपको कोर्स मटेरियल मिल जाएगा। और बाकी जो हैं, बाकी भक्त उनके लिए सत्संग से आप लोग अनाउंसमेंट करेंगे। बाकी जो डिवोटी हमारे
ठीक है, हरे कृष्णा, थोड़ा ध्यान दीजिए इधर। तो अभी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कोर्स के लिए जो भी भक्त रजिस्टर कर रहे हैं, ये फॉर्म भर दीजिए, और जो अभी रजिस्ट्रेशन फीस देंगे उनको कोर्स मटेरियल मिल जाएगा। और आप लिख दीजिएगा उसमें कि आपको इंग्लिश में चाहिए या हिंदी में चाहिए। अगर हिंदी में चाहिए तो आपको जो कोर्स मटेरियल है वो अगले हफ्ते मिल जाएगा, ठीक है? बाहर बुक पड़ी है सैंपल, उसका आपको जो है नेक्स्ट वीक मिलेगा। जिनको हिंदी में चाहिए
6:30 से 6:30
जिनको इंग्लिश में चाहिए उनको अभी मिल
जाएगा।
दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि जो बाकी भक्त हैं
तो ये रहेगा,
उनके लिए भी जो है हम वो सब बाहर जाएंगे कीर्तन के लिए। अभी कीर्तन होगा, उसके बाद वापस हम लोग यहीं पे आएंगे। और जो फर्स्ट टाइम आप में से कितने लोग आए हैं, हाथ धरा कीजिए। जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो आगे आके बैठेंगे यहाँ पे, ठीक है? और बाकी भक्त जो है वो अपने अपने फैसिलिटेटर या जिनके वो टच में है उनसे बात करेंगे, ठीक है? हरे कृष्ण।